प्राबल्य था, बाद में कुछ शास्त्रज्ञ आए जिनमें न्यूटन का नाम प्रसिद्ध है, उन्होंने यह सिद्धांत रखा कि यह सारी जो सृष्टि है उसका बेसिस माने मैटर है और इसके कारण मटेरियलिज्म और उसमें से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी और उसमें से यह धारणा कि विश्व का केंद्र बिंदु व्यक्ति है माने मैं हूँ, मेरे लिए विश्व है और इसके कारण मैं मेरे सुख की प्राप्ति करूँ यही मेरा सर्वोच्च ध्येय है और मेरे सुख के प्राप्ति के लिए यदि मैं अन्य लोगों का शोषण करता हूँ तो इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि सर्वोच्च ध्येय मेरा सुख यही है, ऐसी शोषण प्रवृत्ति और उसके कारण पूंजीवाद का निर्माण हुआ और चारों ओर पूंजीवाद बढ़ने लगा। इसमें से पूंजीवाद के विरोधी कई सिद्धांत निर्माण हुए, उसमें से एक प्रमुख सिद्धांत कम्युनिज्म 1917 में रूस में लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति हुई, कम्युनिस्ट क्रांति हुई और कम्युनिस्ट क्रांति के बाद दुनिया का विचार प्रवाह कुछ अन्य दिशा में जाने लगा। पूंजीवाद से त्रस्त सभी थे किंतु 1917 के सफल रूसी क्रांति के पश्चात चारों ओर यह भावना फैल गई कि अब पूंजीवाद को खत्म करने का काम कम्युनिज्म करेगा। हिंदुस्तान के सामान्य लोग और राजनीतिक नेता भी यह मानने लगे कि कम्युनिज्म खत्म करने का काम ये कैपिटलिज्म खत्म करने का काम कम्युनिज्म करने वाला है। ऐसे स्थिति में 1920 में नागपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य इस नाते अपने परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी थे, उन्होंने एक प्रस्ताव स्वागत समिति के माध्यम से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ भेजा। उस समय वो स्वीकार नहीं हुआ लेकिन वह भेजा। उसमें ऐसा दिया था कि नागपुर कांग्रेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना ध्येय स्पष्ट रूप से घोषित करना चाहिए, यह ध्येय द्विविध होना चाहिए, एक कि भारत को स्वतंत्र करते हुए उसमें गणराज्य की स्थापना और दो विश्व के सभी देशों को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना, ये द्विविध ध्येय कांग्रेस का होना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव उन्होंने भेजा। माने जब हिंदुस्तान के सभी लोग और नेता, दुनिया के भी लोग, इनकी मान्यता थी कि कैपिटलिज्म को खत्म करने का काम कम्युनिज्म करेगा, ऐसे समय 1920 में रूसी क्रांति के तुरंत पश्चात यह प्रस्ताव डॉक्टर हेडगेवार जी ने ड्राफ्ट किया, वो कांग्रेस के पास भेजा। इससे स्पष्ट होता है कि उनको यह दिखता था कि यह जो सर्वसाधारण धारणा है कि पूंजीवाद कम्युनिज्म के द्वारा खत्म होगा, यह होने वाला नहीं है। और आगे अपने को ही एक काम करना पड़ेगा, भारत को ही एक काम करना पड़ेगा, ऐसी दूरदृष्टि उनकी थी, यह इस पर से स्पष्ट होता है। आज हम इस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। कम्युनिज्म खत्म हो गया, पूंजीवाद बढ़ता गया, और उसका मुकाबला करने का काम कौन करेगा, यह प्रश्न आज निर्माण हुआ। और परिस्थिति ने, जैसा परम पूज्य डॉक्टर जी ने कहा था, कि पूंजीवाद का विरोध करने वाले तत्वों का नेतृत्व भारत को करना पड़ेगा, यह जो उन्होंने देखा था, आज यह परिस्थिति आ रही, उस परिस्थिति को और हम जा रहे हैं। जब हम स्वदेशी का विचार करते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये वेरी नैरो माइंडेड है, संकीर्ण संकुचित मनोवृत्ति के, अपने देश का विचार करते हैं, दुनिया का नहीं करते। ऐसा नहीं है। हमारे देश का विचार हमेशा मानवता का ही रहा। हमने वैदिक काल से स्वयं अपने को मानवता से ही एक एकात्म आइडेंटिफाई ऐसा माना। किंतु पूरे विश्व का भी कुछ कल्याण करना हो तो उसके लिए बेस ऑफ ऑपरेशन होने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र पूरा विश्व होगा, किंतु उसके लिए बेस ऑफ ऑपरेशन चाहिए। जैसे छत्रपति शिवाजी के मन में पूरे हिंदुस्तान में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने का विचार था, किंतु बेस ऑफ ऑपरेशन चाहिए था, महाराष्ट्र को बेस ऑफ ऑपरेशन किया। जोसेफ मैजिनी के मन में पूरे इटली को स्वतंत्र करने का विचार था, किंतु बेस ऑफ ऑपरेशन चाहिए था, पीडमोंट स्टेट को उन्होंने बेस ऑफ ऑपरेशन बनाया। प्रिंस बिस्मार्क के मन में संपूर्ण जर्मनी को, 13 राज्य जर्मनी के, उनको संयुक्त करके, एकत्रित करके एक प्रबल स्वतंत्र संयुक्त ऐसा जर्मनी बनाने का स्वप्न वो देखते थे, लेकिन बेस ऑफ ऑपरेशन उन्होंने प्रशिया को बनाया। वैसे संपूर्ण विश्व का विचार डॉक्टर जी के सामने था, यह इससे स्पष्ट दिखता है कि विश्व को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना, विश्व के सभी देशों को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना, इससे स्पष्ट दिखता है कि इस तरह से विश्व का चित्र उनके सामने था, और वो भारत को विश्व कल्याण के लिए बेस ऑफ ऑपरेशन मानते थे। यद्यपि हम उस समय परतंत्र थे, तो भी भारत को ही वो बेस ऑफ ऑपरेशन मानते थे, यह उससे स्पष्ट होता है। आज हम उस परिस्थिति की ओर आ रहे जिसकी कल्पना डॉक्टर जी ने 1920 में की थी, इसीलिए वो दूरदृष्टि के थे। उनकी दृष्टि दूरगामी थी, मूलगामी थी, और वह जो परिस्थिति है कि भारत के नेतृत्व में यह संघर्ष होगा पूंजीवाद के खिलाफ, वह परिस्थिति निकट आ रही है। 3 दिन यहां जो विचार हुआ, विश्व व्यापार संगठन, जागतिक बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अमेरिका के निहित स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट, इन सब का जो आक्रमण दुनिया पर हो रहा है उसके बारे में विचार हुआ। स्वदेशी जागरण मंच की क्यों स्थापना हुई, उसका कार्य कैसा चला, कहां से निकले, कहां तक आए, यह भी हम लोगों ने सोचा। आगे के कार्यक्रमों का भी विचार किया। एक बात सबके ख्याल में आई कि यद्यपि 15 अगस्त 1947 को खंडित भारत का ही क्यों न हो, स्वराज्य हमें प्राप्त हुआ, तो भी यह राजनैतिक स्वराज्य, राजनैतिक स्वातंत्र्य हमारे संपूर्ण स्वातंत्र्य की गारंटी नहीं हो सका। और कॉन्स्टिट्यूशनली हम स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न सॉवरेन होते हुए भी हमारे सॉवरेनिटी पर, संप्रभुता पर, स्वतंत्रता पर आर्थिक मोर्चे से आक्रमण शुरू हुआ। और इस आक्रमण के कारण हम विदेशी आर्थिक साम्राज्य में जाने की संभावना निर्माण हुई। उसके खिलाफ लड़ने की आवश्यकता सब लोग महसूस करने लगे। लेकिन यह जो संकट आ रहा है, इसकी कल्पना हिंदुस्तान के जननेताओं ने, राजनेताओं ने आम जनता को जैसी देना चाहिए थी वैसी नहीं दी। इसके कारण आम जनता को पता ही नहीं है कि हम फिर से आर्थिक साम्राज्यवाद में जा रहे हैं, दूसरे के गुलाम बनने जा रहे हैं, इसकी कल्पना ही नहीं। और इसी के कारण हम लोगों ने जब मंच की स्थापना की तो इसका नाम जागरण रखा गया, स्वदेशी जागरण मंच। जागरण की आवश्यकता है, सामान्य जनता को परिस्थिति क्या है यह समझाने की आवश्यकता है। अब यहाँ हमने जो कुछ भी सारी जानकारी ली, हम कहाँ खड़े हैं, पहले विश्व व्यापार संगठन के बारे में स्वदेशी जागरण मंच की बात मानने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। ब्यूरोक्रेट्स उनको कहते थे कि स्वदेशी वाले अर्थशास्त्र जानते ही नहीं। लेकिन स्वदेशी जागरण मंच ने जो कुछ उसके विषय में जागरण किया, अन्य संस्थाओं ने भी सहयोग दिया, उसके फलस्वरूप सरकार पर दबाव आया और दोहा के कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर मारन ने वही भूमिका अपनाई जो हमने पहले बताई थी। और इसके लिए मिनिस्टर मारन का कार्य सराहनीय है, अभिनंदनीय है, ऐसा हमने कहा। यहाँ तक तो बात सब जानते हैं, किंतु हम अभिनंदन करने के लिए नहीं गए। क्यों? क्योंकि एक तो बात यह थी कि यद्यपि महाराज ने यह भूमिका वहां अपनाई, तो भी अमेरिका प्रभावित कुछ तत्व हमारे देश में ऐसे हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी है, कुछ नेता लोग भी है, शासन में चलाने वाले लोगों में भी कुछ है जिनके ऊपर अमेरिका का प्रभाव है। उनका प्रयास तभी से शुरू हुआ कि जो कट्टर भूमिका दोहा में अपनाई गई भारत सरकार के द्वारा, अब इसके बाद अगले कॉन्फ्रेंस में WTO के ऐसी भूमिका अपनाना ठीक नहीं है, डाइल्यूट करना चाहिए, उसको शिथिल करना चाहिए। इस दृष्टि से सरकार पर दबाव डालने के प्रयास शुरू हो गए। दूसरी बात, अमेरिका की एक शैली है, वो सिद्धांत का विचार नहीं है, वो सीधे सीधे आवश्यकता हुई तो किसी भी देश के नेताओं को खरीदने की कोशिश करता है। केवल उदाहरण के लिए बताऊं, सद्दाम हुसैन के साथ जब लड़ाई शुरू हुई, सारा अरब विश्व, सारा अरब संसार सद्दाम के पक्ष में और अमेरिका के खिलाफ न जाए, इसलिए कुछ अरब देशों को फोड़ने का प्रयास अमेरिका ने किया। सऊदी अरेबिया और इजिप्त, इनको सद्दाम के खिलाफ खड़ा किया, किंतु कैसा खड़ा किया, सिद्धांत के आधार पर नहीं। उदाहरण के लिए इजिप्त पर उस समय 113 अरब कर्जा अमेरिका का था, 113 अरब कर्जा। अमेरिका ने घोषणा कर दी किया कर्जा हमने माफ कर दिया है, और सद्दाम के खिलाफ इजिप्त खड़ा हुआ। तो विभिन्न देशों के नेताओं को खरीदने की शैली अमेरिका की है, और विश्व व्यापार संगठन में भारत जहां हिम्मत के साथ खड़ा होता है, वहां बाकी विकसनशील देश भारत के साथ न जाए, इसके लिए उनके नेताओं को खरीदने का प्रयास दोहा से ही शुरू हुआ। शुरू होने वाला ऐसा मैं नहीं बोलता, वो प्रयास शुरू हो गया, दोहा से यह शुरू हुआ कि अन्य विकसनशील देशों को भारत से अलग इस तरह से अपने पक्ष में खींचने का प्रयास पैसे देकर दोहा से ही शुरू हुआ। और फिर यहां प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 10 साल में 10 करोड़ नौकरी जॉब्स देंगे, एक साल में 1 करोड़ जॉब्स, और उसके लिए कमिटी की नियुक्ति, टास्क फोर्स, मॉन्टेंग सिंह अहलूवालिया, और उनकी रिपोर्ट आई और ऐसी रिकमेंडेशंस आई। ऐसा दिखता है कि अमेरिका के जेब में बैठकर ये सारी रिकमेंडेशंस की है। इन रिकमेंडेशंस पर यदि अमल होता है तो हिंदुस्तान के सभी उद्योग, हिंदुस्तान के सभी क्षेत्र विदेशियों के लिए खुल जाएंगे, और यहां विदेशी साम्राज्य आसानी से आ जाएगा। उस पर अभी सरकार की प्रतिक्रिया आने की है। आपने कहा है कि सरकार ने ये मॉन्टेंग सिंह अहलूवालिया के सिफारिशों को रिजेक्ट करना चाहिए, आपने कहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक सरकार की प्रतिक्रिया उस पर आई नहीं। ऐसे स्थिति में हम खड़े, माने एक तरफ 2 साल के बाद जो WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें हमारे लिए घातक ऐसे कई विषय चर्चा के लिए और दबाव डालकर वो पारित करने के लिए ऐसे विषय आने वाले हैं 2 साल के बाद। अभी स्थगित किए हैं, महाराज ने अपने प्रयास से स्थगित करवाए, अच्छी बात हुई, लेकिन वो समाप्त नहीं हुए, वो केवल ही हैज बॉट टाइम, उन्होंने केवल समय खरीद लिया है। 2 साल के बाद ये सारे संकट जैसे के वैसे फिर से आने वाले, तो WTO के द्वारा आने वाले यह संकट, ये टास्क फोर्स से सिफारिशों के कारण आने वाला यह महान संकट, ऐसे समय हमारी यह आगरा की कॉन्फ्रेंस हो रही है। माने जब एक कगार पर हम खड़े हैं, अब ज्यादा समय नहीं है, टास्क फोर्स के सिफारिशों के कारण हो और उसमें WTO में 2 साल के बाद होने वाली जो बातें हैं उसके कारण हो, हमारा स्वातंत्र्य हम समाप्त तक हो जाएगा, फिर से हम परतंत्र हो जाएंगे, और जनसाधारण की इसकी कुछ कल्पना नहीं। आज हम कहां खड़े हैं, स्वातंत्र्य समाप्त होने की स्थिति में खड़े हैं, सारे उद्योग, हमारी खेती, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सभी कुछ, सारे क्षेत्र विदेशियों के हाथ में सौंपने का जो षड्यंत्र है उसका प्रारंभ हो चुका है। आज बहुत तेजी से वो बढ़ रहा है। तो आज की स्थिति को, जब हमारा स्वातंत्र्य और संप्रभुता खतरे में है, हमारी क्या स्थिति है जरा सोच लीजिए। आप जी थोड़ा विचार करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आज की स्थिति ठीक वही है, एग्जैक्टली वही है जो 150 साल के पहले एक बार निर्माण हुई थी। 150 साल के पहले ऐसी स्थिति थी कि अंग्रेज अपना साम्राज्य बढ़ाते जा रहे थे, विभिन्न राजाओं को उन्होंने परास्त किया था, देश उनके कब्जे में जा रहा था, और फिर सब लोग सोचने लगे थे कि अब सारे लोग मिलकर अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का यदि प्रयास नहीं करते तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापन होगा, हमारा स्वातंत्र्य समाप्त होगा। यह धारणा सबकी हुई थी, आम जनता की थी, सेना के लोगों की थी। और ऐसे समय जब स्वराज्य समाप्त होने की स्थिति है, अंग्रेजी साम्राज्य स्थापन पूरी तरह से होने की स्थिति है, ऐसे समय सब मिलकर इसको उखाड़ फेंकना चाहिए, इस धारणा से कुछ षड्यंत्र हुआ। 10 मई 1857 को मंगल पांडे के राइफल से पहली गोली झाड़ी गई। वह 1857 के स्वातंत्र संग्राम का प्रारंभ था। 10 मई को मंगल पांडे ने यह प्रारंभ किया। उस समय जो स्थिति थी वही स्थिति आज है, ऐसा सबके ख्याल में आ सकता है कि अभी यदि पूरी ताकत लगाकर विदेशी साम्राज्य को हटाने का प्रयास नहीं किया गया तो फिर विदेशी साम्राज्य आ जाएगा, और एक बार आ जाए तो फिर उसको उखाड़ना तो और कठिन होगा। तो इसी समय पूरी ताकत लगाकर प्रयास करना चाहिए, ऐसी धारणा देशभक्तों के मन में निर्माण हुई है, वो ठीक है, किंतु आम जनता को इस सारे चीज़ों का पता नहीं है, उनको जागरूक करना है। और इसलिए यह बात लेकर, वस्तु स्थिति लेकर, परिस्थिति का संदेश लेकर हमने तुरंत जनता के पास पहुंचने की आवश्यकता है। तुरंत मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 साल का अवधि है, ज़्यादा नहीं। WTO के अगले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस तक अपने को समय है, तो 2 साल के अंदर अंदर संपूर्ण जनता को जागरूक करना और जागरूक जनता का दबाव सरकार पर लाना, क्योंकि इसमें सरकार की भूमिका प्रमुख है। सरकार ने ही ये सारा स्वीकार करना या रिजेक्ट करना, यह सरकार का काम है। आज सरकार स्पष्ट दिखता है कि विदेशियों से प्रभावित हो रही है, तो सरकार पर ऐसा दबाव लाना कि विदेशी अपने उद्योगों में, अपने कृषि में, बाकी जगह अन्य क्षेत्रों में, शिक्षा क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में विदेशी न आ पाए, आर्थिक आक्रमण, सांस्कृतिक आक्रमण यह हट जाए, तो इस तरह का दबाव जागृत जनमत का सरकार पर लाना और उनको रोकना, आर्थिक आक्रमण को, सांस्कृतिक आक्रमण को, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अमेरिका के वेस्टेड इंटरेस्ट और मल्टीनेशनल्स, इनका जो बड़ा आक्रमण हो रहा, इसको रोकना। और इस कार्य में सरकार जनता के पक्ष में रहे, राष्ट्र के पक्ष में रहे, उनके पक्ष में न जाए, इतना दबाव सरकार पर लाना, यह सारा करने के लिए 2 साल केवल अपने लिए पास है, काम बहुत बड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि आज की हमारी स्थिति वही है जो मंगल पांडे ने गोली झाड़ने के समय थी, उसी स्थिति में आज हम हैं, और युद्ध चल रहा है। आज तो केवल प्रचार युद्ध है, और प्रचार के सारे साधन उनके पास है, देशभक्तों के पास प्रचारों के साधन नहीं है, ऐसे स्थिति में जनता के पास यह संदेश पहुंचाना कठिन काम है और यह कठिन काम 2 साल के अंदर अंदर हमें करना है। परिस्थिति की गंभीरता का विचार हर एक के मन में रहना चाहिए। यह सामान्य स्थिति नहीं है और इस दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि उनके हाथ में प्रचार के साधन है, हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे स्थिति में वस्तु स्थिति का संदेश आम आदमी के पास पहुंचाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा, कितना समय देना पड़ेगा, इसका विचार हमने करना चाहिए। समय दान, हर एक कार्यकर्ता ने ज्यादा से ज्यादा समय देना, समय दान, यह बहुत महत्व की बात इस समय है। बहुत बार क्या होता है, यहां बैठे हुए हम सब लोग, हम सिंसियर हैं, आदर्शवादी है, कट्टर देशभक्त है और देश के लिए प्राणार्पण करने की तैयारी रखने वाले हम सब लोग यहां बैठे हैं, किंतु देश के लिए प्राणार्पण करने की तैयारी होते हुए भी हम जब यहां से जाते हैं, घर जाते हैं, अब स्वदेशी जागरण मंच का संदेश चारों ओर पहुंचाने का काम हाथ में लेंगे यह सोच कर जाते हैं, देखते हैं कि एक टेलीग्राम आया है, सास हॉस्पिटल में है, मृत्यु शैया पर है, उसको देखने के लिए तुरंत जाना है, न जाने से कैसा चलेगा। हम सोचते जाएंगे, वहां जाएंगे, सास की तबीयत वगैरह देख कर आएंगे, फिर स्वदेशी जागरण मंच का काम शुरू करेंगे। वहां 10-15 दिन रुकना पड़ता है, फिर हम घर आते हैं। पिताजी कहते हैं कि बेटा तू पागल हो, अरे लड़की शादी के योग्य हो गई है, तुरंत नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा, पहले लड़के की शादी कर दो, फिर स्वदेशी जागरण मंच का काम तो जीवन भर करना ही है। बात सही है, हम वर संशोधन के लिए लगते हैं, वो नहीं होता तो लड़का कहता है कि मेरी ग्रेजुएशन की परीक्षा है, आप मेरे लिए कुछ समय मुझे पढ़ाने में यदि नहीं लगाएंगे और मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो मेरी करियर नहीं बनेगी, सारा जीवन खराब हो जाएगा, अब जरा 1 महीना मेरे लिए आप दीजिए। हम सोचते ठीक है 1 महीना दे देंगे, अब बाकी जीवन सारा स्वदेशी जागरण मंच के लिए। तो ये ऐसी कुछ परिस्थिति है भगवान की दुनिया का, ऐसा ये है कि ये एक एक काम आते ही जाते हैं, व्यक्तिगत पारिवारिक। हम सोचते ही जाते हैं कि हम मंच का काम करेंगे, देश का काम करेंगे, साम्राज्य विरोधी काम करेंगे, लेकिन लड़की की शादी होने के बाद, फिर हॉस्पिटल से आने के बाद, फिर लड़का ग्रेजुएट होने के बाद, एक कहानी हम भारतीय मजदूर संघ में बताते हैं कि एक आदमी वीरान प्रदेश में प्रातः से घोड़े पर बैठकर जा रहा था, दौड़ते दौड़ते, वीरान प्रदेश था, कहीं छाया नहीं थी, वृक्ष नहीं था, कहीं मकान वगैरह नहीं थे। जैसे जैसे धूप बढ़ती गई, ग्रीष्म ऋतु था, गर्मी के दिन थे, तो ये गर्मी से, ये पसीने से तर हो रहा, इसका घोड़ा भी पसीने से तर हो रहा, इधर मध्यान्ह की ओर जा रहे, कहीं छाया नहीं, बहुत परेशान। इतने में उसको दूर से कुछ हरियाली दिखी, तो सोचा कि यहां हरियाली है तो कम से कम छाया तो होगी। वहां पहुंचे तो वहां कई वृक्ष थे, कुआं भी था, कुएं के पास पानी की टंकी थी और कुएं से पानी में टंकी में पानी देने वाला रहट भी था, बहुत खुश हो गया। आया, पहले स्वयं पानी पी लिया टंकी से, और उसका घोड़ा भी प्यासा था, पानी पीने के लिए घोड़े को टंकी के पास ले गया। अब रहट से कुएं, रहट से पानी जा रहा था टंकी में कुएं का, घोड़ा टंकी को पानी मुंह लगाता है नहीं लगाता, तो वहां रहट का खट ऐसा आवाज हुआ। अभी रहट जब चलता है तो खट खट आवाज होता है, तो रहट का खट आवाज हुआ। घोड़े की आदत ऐसी थी कि कहीं भी खट आवाज हुआ तो उधर ध्यान, उसका ध्यान उधर जाता था। वो पानी को मुंह नहीं लगाता तो खट आवाज हुई तो उसने उधर देखा, वो खट आवाज बंद हो गई, फिर वो मुंह को, मुंह अपना पानी के पास ले जाता है, फिर से रहट का खट आवाज हुआ। तो खट खट आवाज लगातार चलने के कारण वो पानी पी नहीं सका, वो पानी के पास मुंह ले जाता है तो इधर खट आवाज हो जाती है, वो उधर खट के तरफ देखता है, रहट के तरफ देखता है, फिर से रहट का खट आवाज हुआ। तो खट खट आवाज लगातार चलने के कारण वो पानी पी नहीं सका, वो पानी के पास मुंह ले जाता है तो इधर खट आवाज हो जाती है, वो उधर खट के तरफ देखता है, रहट के तरफ देखता है, तो वो पानी पी नहीं सकता था। उसने माली को बुलाया, अरे बोले तुम्हारा ये क्या है रहट, मेरे घोड़े की आदत है कि जब खटखट आवाज होती है वो उधर देखता है, पानी नहीं पी सकता, तो तुम्हारा रहट बंद करो। रहट बंद किया, रहट बंद किया तो टंकी में पानी आना बंद हुआ। अब खटखट आवाज तो बंद हुई लेकिन पानी भी खत्म हुआ। उसने कहा कि अरे तुम तो पानी आकर खत्म हुआ। बोले साहब आप पढ़े लिखे हैं, आप समझते नहीं, यहाँ पानी चाहिए टंकी में तो रहट चलना चाहिए, और रहट चलना चाहिए तो खटखट होने वाली है, मेरे रहट की आदत है, तो मेरे रहट की आदत बदल नहीं सकती। तुम्हारे घोड़े ने पानी पीना है तो घोड़े की आदत बदल दीजिए कि खटखट के चलते हुए भी वो पानी पी सके, खटखट के चलते हुए भी वो पानी पी सके, ऐसी अपने घोड़े की आदत आप बदल दीजिए। ये भगवान का रहट भी ऐसा ही चलता है, कभी सास की बीमारी रहती है, कभी लड़के का ग्रेजुएशन रहता है, कभी लड़की की शादी रहती है, ये चलने ही वाला है, ये रहट की खटखट बंद होने वाली नहीं। काम करना है तो ये खटखट चलते हुए काम करने की आदत लगाने की आवश्यकता। हमारी जिम्मेवारी विशेष है। पाप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि किसी ने कुछ पाप किया किंतु न जानते हुए, क्या उसको पता ही नहीं था कि ये पाप है, तो बोलते उसको पाप नहीं लगता। लेकिन जिसको मालूम है कि ये मेरा काम माने पाप कर्म है, वो यदि पाप करता है तो उसको पाप लगता है। हम स्वदेशी जागरण मंच वाले ऐसे कि हम जानते हैं कि ये पाप कर्म है, इस समय निष्क्रिय रहना, इस समय कम समय देना, ये पाप कर्म है, ये हम जानते हैं। तो हमारी जिम्मेवारी हमने समझना चाहिए। और इस दृष्टि से मैं धृष्टता पूर्वक एक प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा समय स्वदेशी जागरण के लिए देना चाहिए। और कुछ लोगों ने हिम्मत के साथ पूरा समय स्वदेशी जागरण के लिए देना चाहिए आने वाले 2 वर्ष तक, माने मानो हमारे जो व्यक्तिगत कार्य है, पारिवारिक कार्य है, उनके लिए 2 साल तक हम मोरेटोरियम उनके ऊपर लगाए। मोरेटोरियम का मतलब होता है कि सारे काम स्थगित करना 2 साल तक। सारे काम स्थगित करने के कारण नुकसान होने वाला है, परिवार का भी कुछ नुकसान होगा, आपका व्यक्तिगत भी कुछ नुकसान होगा। किंतु आप यदि सोचेंगे कि अभी सारे व्यक्तिगत पारिवारिक काम कर लेंगे, बाकी सारा जीवन स्वदेश के लिए देंगे, उसका उपयोग नहीं होगा, क्योंकि तब तक मामला खत्म हुआ होगा, देश लोगों का विदेशियों के हाथ में चला गया होगा। जो करना है ये 2 साल के अंदर अंदर करना है। तो इस दृष्टि से 2 साल तक व्यक्तिगत पारिवारिक कामों पर मोरेटोरियम स्थगन आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति देशभक्त है, देश के काम के लिए प्राणार्पण कर सकता है, लेकिन होता नहीं, समय नहीं दे सकता। इसका कारण ये नहीं है कि वो देशभक्त नहीं है, इसका कारण ये नहीं है कि वो सिंसियर नहीं है, किंतु सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है कि इस समय सारा काम छोड़कर स्वदेशी का काम करना कितना अर्जेंट है, इसकी कल्पना ही नहीं है। ये सेंस ऑफ अर्जेंसी न होने के कारण हमारे कार्यकर्ता सिंसियर देशभक्त प्राणार्पण की तैयारी रखने वाले होते हुए भी आज जो अपेक्षित कार्य है वो उनके हाथ से नहीं हो रहा। ये सेंस ऑफ अर्जेंसी आप समझ लीजिए, कार्यकर्ता के लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी का क्या मतलब होता है समझ लीजिए, और उस दृष्टि से ऐसे कितना फर्क कारण है। शिवाजी के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, स्थाई सेना नहीं थी। किसान लोग जब खेती का काम नहीं रहता, विजयादशमी में सीमोल्लंघन करते हुए सेना के रूप में